ओम नमो भगवान कुंथुनाथाय नमः।
श्री कुंथुनाथो भगवान सनातो अतिशयार्थिभिः सुरासुर ननाथानां एकनाथोस्तु वाश्रिये।
16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ की मोक्ष प्राप्ति के अर्धपल्य पश्चात ही मोक्ष कामी आत्माओं की करुण पुकार पुनः गूंजने लगी। इसी परम लक्ष्य की प्राप्ति का सम्यक मार्गदर्शन करने के लिए ही 24 तीर्थंकर आत्माएं समय समय पर इस धरा पर आती रहती हैं। 17वें तीर्थंकर भगवान कुंथुनाथ तो दया के आगार हैं। ऐसे कृपा सिंधु भगवान कुंथुनाथ ने कुरु वंश में जन्म लेकर अपनी जन्मभूमि हस्तिनापुर को पुनः गौरवान्वित होने का सौभाग्य प्रदान किया। तो आइए हम भगवान कुंथुनाथ की जन्मभूमि हस्तिनापुर की ओर चलते हैं।
कौरव वंशी शासकों की पवित्र भूमि हस्तिनापुर नगरी काश्यप गोत्री नरेश सूरसेन द्वारा शासित थी। राजा और प्रजा सभी सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। भगवान कुंथुनाथ के आगमन के शुभ सांकेतिक स्वप्न चिन्हों ने माता श्रीकांता को पहले ही धन्य कर दिया था। महारानी के गर्भ में सर्वार्थ सिद्धि प्रदायक अहमिंद्र का जीव अवतरित हो चुका था। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण था। कुबेर ने रत्न वर्षा कर इस अलौकिक आत्मा के आगमन का शुभ संकेत करते हुए गर्भ कल्याणक मनाया।
अंततः वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन आग्नेय योग का वो शुभ मुहूर्त भी आया जब गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात माता श्रीकांता ने बकरा लांछनधारी स्वर्णमयी देह कांति युक्त इस अलौकिक बालक को जन्म दिया।
देवों ने आकर भगवान का जन्म कल्याणक मनाया। सुमेरु पर्वत पर क्षीर सागर के पवित्र जल से भगवान का अभिषेक हुआ। मांगलिक वस्त्राभूषणों से अलंकृत भगवान कुंथुनाथ का अपरिमित सौंदर्य मन को आह्लादित कर देता था। माता श्रीकांता को बाल भगवान सौंपकर देवगण अपने अपने स्थान चले गए। भगवान कुंथुनाथ पूर्व भव में अपने सुकर्मों के लिए ख्यात थे। आइए हम उसकी एक झांकी देखते हैं।
जम्बुद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सुसीमा नगरी के राजा सिंहरथ अपनी न्यायप्रियता और सुयोग्य शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उल्कापात को देखकर राजा सिंहरथ का मन सांसारिक आकर्षणों के प्रति उदासीन हो गया। मुनि यति वृषभ से दीक्षित होकर कठोर तपश्चर्या द्वारा उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति के बंध को प्राप्त कर लिया और आयु की समाप्ति पर समाधि मरण कर सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर विमान में अहमिंद्र हुए थे और अगले भाव में भगवान कुंथुनाथ के रूप में इस धरा को धन्य करने आए।
भगवान ने अपने समस्त उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक पालन किया। वे एक ही साथ तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव थे। उनका रूप, वैभव और पुण्य असाधारण था।
एक बार वो वन विहार के लिए गए हुए थे। वहां उन्होंने आतापन योग में स्थित एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि को देखा। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि ये मुनि समस्त कर्मों का क्षय करके इस जीवन में ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। वास्तव में भगवान का ये कथन उनके अनवरत चिंतन और मनन का परिणाम था। इसी बीच उन्हें अपना पूर्व भव स्मरण होने लगा और वो भी आत्मलाभ हेतु प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। लोकांतिक देवों ने उनके विचारों की सराहना करते हुए धर्म तीर्थ प्रवर्तन करने की प्रार्थना की। भगवान कुंथुनाथ ने अपने पुत्र पर राज्यभार सौंप दिया।
अपना राजपाट सौंपने के बाद भगवान विजया नामक पालकी में बैठकर सहेतुक वन पहुंचे। वहीं वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन कृतिका नक्षत्र में सायंकाल बेला का नियम धारण कर सहस्त्र राजाओं के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। उसी समय उनको मनः पर्याय ज्ञान हो गया। देवों ने बड़े उत्साह के साथ भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाया। दीक्षा प्राप्ति के पश्चात भगवान पारणा के लिए हस्तिनापुर पधारे, जहाँ के राजा धर्ममित्र ने उन्हें आहार देकर अपने को धन्य किया। देवों ने पंचाश्चर्य किए।
इसके बाद विविध तप और विहार करते हुए भगवान कुंथुनाथ ने छद्म अवस्था में 16 वर्ष व्यतीत किए। इसी क्रम में वो अपने दीक्षावन पहुंचे तथा तिलक वृक्ष के नीचे बेला का नियम धारण कर ध्यानस्थ हो गए। वहीं चैत शुक्ल तृतीया के दिन सायंकाल कृतिका नक्षत्र में समस्त मोह त्याग के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कुबेर ने समवसरण की रचना की। उसमें गंधकुटी में अशोक वृक्ष के नीचे आसनस्थ होकर भगवान कुंथुनाथ ने देवों, मानवों और तीर्यंचों को धर्म के सच्चे स्वरूप का बोध कराते हुए धर्म तीर्थ प्रवर्तन किया।
इसी प्रकार धर्मोपदेश करते हुए भगवान कुंथुनाथ ने अनेक स्थानों पर धर्म यात्राएं की। अंततः आयु के मात्र एक मास अवशिष्ट होने पर सम्मेद शिखर पर पधारकर सहस्त्र मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण कर लिया। वहीं वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन रात के पूर्व भाग में समस्त कर्मों के क्षयोपरांत वे सिद्ध मुक्त हो गए। भगवान कुंथुनाथ के सेवक यक्ष का नाम गंधर्व और यक्षिणी का नाम सच्युता था।
ओम नमो भगवान हरनाथाय नमः।
अर्नाथस्तु भगवान् चतुर्थारण भोरवी चतुर्थ पुरुषार्थ श्री विलासम वितनोतु वाह।
याद और दया का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। सच्चे हृदय से जब भी कोई आत्मा ज्ञान त्रय धारक भव भय निवारक सर्वार्थ सिद्ध तीर्थंकर आत्माओं को याद करती है तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो दिव्य विभूतियां उन पर अपनी दयामयी दृष्टि प्रार्थना करें। 17वें तीर्थंकर भगवान कुंथुनाथ के निर्वाण प्राप्ति के दीर्घ अंतराल के पश्चात इस धरा पर मोक्षगामी आत्माओं की संख्या पुनः बढ़ने लगी। ऐसी ही विषम परिस्थिति में 18वें तीर्थंकर भगवान अरनाथ का पदार्पण हुआ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के धारक भगवान अरनाथ ने अपने जन्म से हस्तिनापुरी को पुनः धन्य होने का सौभाग्य प्रदान किया। तो आइए हम भगवान अरनाथ की लीला भूमि की ओर चले चलते हैं।
कुरु जांगल देश के हस्तिनापुर नगर में सोम वंश के सिरमौर काश्यप गोत्री महाराज सुदर्शन की महारानी मित्र सेना ने रात्र के अंतिम प्रहर में शुभ स्वप्न दर्शन किए। उसी समय अहमिंद्र का जीव महारानी मित्र सेना के गर्भ में अवतरित हुआ। अवधि ज्ञान के धारक महाराज सुदर्शन ने स्वप्न की सम्यक मीमांसा करने के उपरांत इसे सर्वार्थ सिद्ध तीर्थंकर आगमन का बोधक माना, जिससे महारानी का मन मयूर नर्तन करने लगा। देवों ने भगवान का गर्भ कल्याणक मनाते हुए हर्ष का अनुभव किया। सौ धर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने भगवान के गर्भावतरण के पूर्व ही रत्न वर्षा कर शुभ संकेत दे दिया था।
गर्भकाल की समाप्ति के पश्चात मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी को पुष्य नक्षत्र में माता मित्र सेना ने सहस्र अष्ट लक्षणों से समन्वित अलौकिक पुत्र को जन्म दिया। मीन लांछन से युक्त इस सुवर्णमयी बालक ने भगवान अरनाथ के रूप में धर्म पिपासुओं का परम कल्याण किया। तो आइए हम भगवान के पूर्व भव के पावन कर्मों की ओर ध्यान दें।
जम्मू द्वीप में सीता नदी के उत्तर तट पर कच्छ नामक देश में क्षेमपुर नामक नगर था। वहां के अधिपति महाराज धनपति बड़े ही आदर्शवादी और धन धान्य संपन्न थे। एक बार महाराज धनपति अर्ह नंदन मुनि की पीयूष वर्षी वाणी से इतने प्रभावित हुए कि उनके मन में आत्मकल्याण की भावना प्रबल हो उठी। फिर क्या था, अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। कठोर साधना करने और षोडश कारण भावनाओं के अनवरत चिंतन मनन से उनको तीर्थंकर नामक सातिशय पुण्य प्रकृति का बंध प्राप्त हो गया। अंत में प्रायोपगमन मरण करके वे जयंत नामक अनुत्तर विमान में अहमिंद्र पद को प्राप्त हुए।
इंद्रादि देवों ने बाल भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीर सागर के पावन जल से उनका अभिषेक किया। जब अरनाथ युवावस्था को प्राप्त हुए, पिता ने उन पर राज्यभार सौंपकर तप करने की ठान ली। भगवान अरनाथ ने अपने पराक्रम से चक्रवर्ती पद प्राप्त किया, पर अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वो इस जागतिक पद को महत्वहीन समझते रहे। उनका लक्ष्य तो सर्वोच्च पद की प्राप्ति था।
एक बार वे शरद ऋतु में बादलों की रमणीयता का आनंद ले रहे थे। उसी समय बादल न जाने कहां चले गए। बादलों का अचानक लुप्त हो जाना उनके लिए आत्मालोचन का कारण बन गया। संसार क्षणभंगुर है, अतः इसमें सुख की तलाश करना अज्ञानता है। ऐसा समझकर उन्होंने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की ठान ली। भगवान अरनाथ को अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया। वे सहेतुक वन पहुंचे और वहीं बेला का नियम धारण कर सहस्र राजाओं के साथ दीक्षित हो गए। उसी समय भगवान को मनः पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
दीक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान पारणा के लिए चक्रपुर नामक नगर पधारे, जहां के राजा अपराजित ने प्रासुक आहार प्रदान कर अक्षय पुण्य प्राप्त किया। इसके बाद भगवान अरनाथ अपनी विहार यात्राओं और धर्मोपदेश के माध्यम से अनेक दुखी आत्माओं का कल्याण करते रहे, धर्म तीर्थ स्थापन करते रहे।
अनेक वर्षों तक लोक कल्याण करते हुए एक बार भगवान अपने दीक्षा वन पधारे। वहीं आम्र वृक्ष के नीचे बेला का नियम धारण कर वे आसनस्थ हो गए। इसी अवस्था में कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन सायंकाल रेवती नक्षत्र में अपने समस्त घातिया कर्मों का क्षय करने के उपरांत उनमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य नामक चार क्षायिक गुण प्रकट हुए। देवों ने भक्ति और उत्साह से भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक मनाया। वहीं देव निर्मित समवसरण में देवों, मानवों और तिर्यंचों ने भगवान के उपदेशामृत का पान किया।
भगवान अरनाथ अनेक देशों में विहार यात्राएं कर धर्म उपदेश करते रहे। जब उनकी आयु के मात्र एक वर्ष अवशिष्ट थे, तो उन्होंने सम्मेद शिखर पर पधार कर सहस्र मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया। अंततः योग निरोधोपरांत चैत्र कृष्ण अमावस्या को रेवती नक्षत्र में अपने अघातिया कर्मों के क्षयोपरांत भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। देवों ने भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाते हुए पूजा अभ्यर्चना की। भगवान अरनाथ के सेवक यक्ष का नाम यक्षेन्द्र और सेविका यक्षिणी का नाम धरणी देवी था। भगवान मल्लीनाथाय नमः।
सुरासुर नराधीश मयूर नववारिदम् कर्मद्रुन्मूलने हस्ति मल्लमल्लिमभिष्टुमः।
कालचक्र जब अवसर्पणी काल के चतुर्थ आर्य में गतिमान था, उसी समय भगवान अरनाथ का निर्वाण हुआ। परिणामतः मोक्षकामी आत्माओं का त्राहिमाम सर्वत्र गूंजने लगा। उनकी ये कारुणिक पुकार अत्यंत हृदयावर्जक थी। ऐसी स्थिति में 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ का आगमन हुआ। करुणामूर्ति भगवान मल्लीनाथ की अमृतवाणी इतनी प्रभावशालिनी थी कि उनके श्रवण मात्र से ही अनेक आत्माएं मुक्त हो गईं।
भगवान मल्लीनाथ का जन्म जम्बूद्वीप के भारत खंड में मिथिला की पावन धरती पर महाराज कुंभ और उनकी महारानी प्रजावती के पुत्र के रूप में हुआ था। मिथिला की वैभव संपदा अवर्णनीय थी। पंचवर्णा सुगंधी और दशांग धूप की मनभावनी महक समस्त वातावरण में व्याप्त थी। एक बार रात्रि के अंतिम प्रहर में महारानी प्रजावती ने शुभ स्वप्न दर्शन किए। महारानी निद्रा वंचित हो गई और प्रातःकाल होते ही मांगलिक वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर उन्होंने शुभ फल प्रदायक स्वप्न की बात महाराज से कह सुनाई।
अवधि ज्ञान के धारक महाराज कुंभ के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने इस स्वप्न को त्रिलोक स्वामी भगवान तीर्थंकर के आगमन का सूचक माना। देवों ने बड़ी भक्ति और उत्साह के साथ भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया।
प्रसन्न वदना माता प्रजावती ने 9 मासोपरांत मार्गशीर्ष सुदी एकादशी को अश्विनी नक्षत्र में इस अलौकिक बालक को जन्म दिया। दाहिने पैर में कलश लांछन धारी बाल भगवान की कंचन काया का सौंदर्य चतुर्दिक विकसित हो रहा था। बाल भगवान को ऐरावत पर बैठाकर देवगण सुमेरु पर्वत पर ले गए। वहां क्षीर सागर के पावन जल से भगवान का अभिषेक किया गया। सौधर्मेंद्र ने मांगलिक वस्त्राभूषणों से अलंकृत बाल भगवान को मल्लीनाथ संज्ञा से विभूषित किया।
जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो रूपों में विभाजित है, जिनमें साम्यासाम्य दोनों मिलते हैं। जहां श्वेतांबर मतावलंबी भगवान मल्लीनाथ को स्त्री रूप में स्वीकार करते हुए उन्हें मल्लिकुमारी संज्ञा से विभूषित करते हैं, वहीं दिगंबर मत में वो पुरुष रूप में मान्य है।
भगवान मल्लीनाथ अपने पूर्व भव में भी अपने सत्कर्मों के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय वे राजा वैश्रवण के रूप में मेरु पर्वत के पूर्व कच्छकावती नामक देश में वीत शोक नगर के शासक थे। एक बार वे वन सुषमा देखने निकले। वन में उन्होंने एक विशाल वट वृक्ष देखा, जिसकी शाखाएं प्रशाखाएं विस्तृत भूखंड पर फैली हुई थी। राजा उसकी प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ गए, पर लौटते समय जब उन्होंने वहां उस वटवृक्ष को नहीं देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसी बीच वज्र गिर जाने से वो वटवृक्ष अब जला हुआ ठूंठ खड़ा था। राजा ने सोचा कि जब इतने विशाल, उन्नत और बहुमूल्य वटवृक्ष की ये दशा है तो निर्मूल मानव जीवन पर भला क्या विश्वास किया जा सकता है।
अपने पुत्र पर राजपाट सौंप कर राजा ने मुनिराज श्री नाग से दीक्षा ले ली। उन्होंने नाना प्रकार के तप साधना द्वारा अपनी आत्मा को निर्मल किया। परिणामतः उन्हें तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो गया और अंततो गत्वा समाधि मरणोपरांत अपराजित नामक अनुत्तर विमान में उन्होंने अहमिंद्र पद की प्राप्ति की और अगले जन्म में भगवान मल्लिनाथ हुए।
भगवान मल्लिनाथ जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो पिता ने उनके विवाह का आयोजन किया, पर भगवान इससे एकदम निर्लिप्त थे। वे पूर्व भव में अपराजित विमान में भोगे गए अपने सुखों का स्मरण करने लगे। उन्होंने सोचा कि जब स्वर्ग के वे भोग न रहे तो सांसारिक सुख के लिए समय नष्ट करना अज्ञानता है। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण आरंभ परिग्रह त्याग का निश्चय कर लिया।
इसके पश्चात भगवान मल्लिनाथ देवोपनीत जयंत नामक पालकी में आरूढ़ होकर श्वेत वन पधारे और सिद्ध भगवान के प्रति नतमस्तक होते हुए केश युंचनोपरांत प्रवर्चित हो गए। उनके साथ सकल संयम धारण करने वाले 300 राजा भी थे। उसी समय भगवान को मनः पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद भगवान पारणा के लिए मिथिलापुरी पधारे, जहां राजानंद शेण ने भगवान को प्रासुक आहार देकर अक्षय पुण्य प्राप्त किया। देवों ने पंचाश्चर्य किए।
दीक्षा प्राप्ति के पश्चात भगवान मल्लिनाथ 6 वर्ष तक छद्म अवस्था में रहकर तपश्चर्या करते रहे। इसी बीच उनका आगमन अपने दीक्षा वन में पुनः हुआ। वहीं 2 दिन तक उपवास करने के उपरांत अशोक वृक्ष के नीचे वे आसनस्थ हो गए। पौष कृष्ण द्वितीय को पुनर्वसु नक्षत्र में उन्हें लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देवों ने बड़ी भक्ति भाव से भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक मनाते हुए उत्सव गान किया और समवसरण की रचना की, जिसमें आसीन होकर भगवान मल्लिनाथ ने अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा धर्म तीर्थ प्रवर्तन किया।
प्रज्ञा चक्षु भगवान को जब अपने निर्वाण की निकटता का बोध हुआ तो 1 माह पूर्व ही वो संवेदाचल के शिखर पर जा पहुंचे। वहीं 5,000 मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण कर लिया।
अंततः फाल्गुन शुक्ल पंचमी को भरणी नक्षत्र में संध्या समय समस्त जग को अपने ज्ञान कुंज से आलोकित कर यह अलौकिक ज्योति सदा के लिए शून्य में विलीन हो गई। समस्त देवों ने भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाते हुए पूजा अर्चना की। भगवान मल्लिनाथ के सेवक यक्ष का नाम कुबेर और यक्षिणी का नाम वैराग्या था।